नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 61। स्यात्साद्यर्श ब्रह्मस्ताव स्यात्सादृश्य ब्रह्मस्ताव विकल्पे सति वस्तुना विकल्पे सति वस्तुना जाग्रत्स्वपौ यथा स्वप्ने जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता तथा विधि निषेधता स्यात्सादृश्य ब्रह्मस्ताव विकल्पे सति वस्तुना जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधताम् स्यात्सादृश्य ब्रह्मस्ताव विकल्पे सति वस्तुना जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। शब्दार्थ स्यात् हो सादृश्य समानता भ्रमा भूल त्रुटि तावत् तब तक विकल्पे अलग से सती अंश वस्तुनः वस्तु से जागृत जगा हुआ स्वापौ सोता हुआ यथा जिस तरह स्वप्ने स्वप्न में तथा उसी तरह विधि निषेधता आदेशों तथा निषेधों से युक्त विधान। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की। जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उनमें समानता सादृश्य मानना भ्रम या मोह कहलाता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। ऐसी मानसिक अवस्था में शास्त्रों के विधानों की, जो आदेश तथा निषेध के रूप में होते हैं, संस्तुति की गई है। तात्पर्य, इस जगत में अनेक नियामक विधान तथा औपचारिकताएं हैं। यदि यह जगत नश्वर या मिथ्या है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आध्यात्मिक जगत समान होते हुए भी मिथ्या है। यदि किसी का भौतिक शरीर मिथ्या या नश्वर है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का शरीर भी मिथ्या या नश्वर है। आध्यात्मिक जगत सत्य सही है और भौतिक जगत इसी के समान है। उदाहरणार्थ, रेगिस्तान में कभी कभी मृग मरीचिका पाई जाती है और चूंकि इसका जल मिथ्या है अतः इसका यह अर्थ नहीं है कि जल वास्तविकता नहीं है। जल का अस्तित्व है किंतु रेगिस्तान में नहीं। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में कुछ भी सत्य नहीं है किंतु सत्यता वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। भगवान का स्वरूप तथा उनका धाम गोलोक वृंदावन शाश्वत वास्तविकताएं हैं। भगवद गीता से हम जानते हैं कि एक अन्य प्रकृति है जो वास्तविक सत्य है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय में की है। भूतग्रामथ एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत हरागमे। भरतस्मात्तु भवान्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्तु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरो इति युक्तस्तम आहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ब्रह्मा का दिन पुनः पुनः आता है और सारे जीव चेतन हो उठते हैं, तब फिर से रात हो जाती है और हे पार्थ वे निसहाय होकर विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक प्रकृति और भी है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह दिव्य है और कभी विनष्ट नहीं होती। जब इस जगत का सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो यह अंश उसी तरह बना रहता है। यह परम धाम अव्यक्त तथा अच्युत कहलाता है और यही चरम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है तो लौट कर नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत नाशवान या मिथ्या है किंतु आध्यात्मिक जगत शाश्वत सत्य है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथांवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखांवितं च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ सभी उपस्थित वैष्णव से प्रार्थना याचना कर रहे हैं कि आप लोग आशीर्वाद दें, स्पेशली सूरदास प्रभु हैं, चतुर्भुज प्रभु हैं, तमाल कृष्ण प्रभु। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गुह्य श्रीमद् भागवतम पे हम कुछ चर्चा कर पाएंगे वैष्णव के आशीर्वाद से। पिछले श्लोक में तात्पर्य नहीं है, अनुवाद है। चूंकि शरीर पांच तत्वों से बना है, अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। चूंकि शरीर मिथ्या है, अतएव इंद्रिय विषय भी स्वभावतः मिथ्या या क्षणिक है। तो यहां पे जैसे हम सुन रहे हैं कुछ दिनों से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो यहां पे प्रश्न आया कि भगवान के बारे में और जीव के बारे में और प्रकृति। तो कुछ जीव होते हैं वो भगवान को भी अपने जैसा ही समझते हैं, जैसे वो भौतिक हैं तो वो सोचते हैं भगवान भी भौतिक है। मायाबद्ध जीव को यह भी नहीं पता है कि वह भी भौतिक नहीं है। बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कि हम जो हैं ये भौतिक पदार्थों से बने हैं। यहां पे जैसे बताया गया कि पृथ्वी भी जो है ये कणों से बनी है और ये भी जो है कुछ क्षण के लिए है। और यहां जैसे बताते हैं चूंकि शरीर पांच तत्वों से बना है, ये शरीर पांच तत्वों से बना है, हम नहीं। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। और आत्मा का सत्य विज्ञान को अगर जीव समझता है तो भगवान को भी समझता है, किंतु स्वयं को भौतिक मान बैठा बद्ध अवस्था में जो जीव है वो भगवान को भी भौतिक समझता है। तो यहां पर इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जगत तो नश्वर है या मिथ्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का धाम भी या भगवान का दिव्य शरीर भी नश्वर है। गोपाल तापन्य उपनिषद में इसके बारे में एक श्लोक का वर्णन है, भूगोल चक्रे सप्तपूर्यो भवन्ति तासाम मध्ये साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी। कि ये भूगोल है, भूगोल में क्या है, सप्तपुरी। इस ब्रह्मांड इस भूगोल में सात नगर हैं, सप्तपुरी। उन सात पुरी में एक है गोपालपुरी। लेकिन वो गोपालपुरी कैसे है वर्णन बताते हैं, तासाम मध्य, उसके मध्य में साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी। वो गोपालपुरी यानी भगवान का धाम इस भौतिक संसार में स्थित होते हुए भी वो साक्षात ब्रह्म है, वो भौतिक नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं कि जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं आत्मवत मन्यते जगत, जो हमारे ऊपर नियम लागू होता है हम वो सब पे वही सोचते हैं कि सब उसी कैटेगरी में है, सब उसी श्रेणी में आते हैं। एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था पंडित और दूसरे गांव से एक माता जी उनको दूध लाके देती थी इनके पूजा के लिए। तो दूध लाने में लेट हो जाता था तो ये ब्राह्मण ने बोला कि तुम दूध जरा जल्दी लाओ क्योंकि मुझे लेट हो जाता है। तो बोले मैं कोशिश करूंगा। तो अगले दिन फिर दूध लाने के लिए लेट हो गया। तो बोले क्यों इतना लेट होता है, तो गुस्सा किया उन्होंने। बोले क्या करूं पंडित जी, यहां पे तो नदी पार करना पड़ता है, नदी तो तैर के पार नहीं कर सकते। जब दूध का घड़ा लाना है तो नाव का इंतजार करना पड़ता है, जब नाविक आएगा नाव लेके तब मैं आऊंगा। तो पंडित ने क्या किया, ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दिया माता जी को? बोले भगवान हरि का नाम लेके लोग संसार के भवसागर को पार कर जाते हैं, तुम एक नदी को पार नहीं कर सकते हरि का नाम लेके। अब बोल तो दिया। ओ माता जी गांव की थी तो बड़ा श्रद्धा था कि ब्राह्मण बोल रहे हैं तो सत्य होगा। तो अगले दिन सवेरे सवेरे आ गई। ये पंडित जी ने पूछा कि आज क्या हुआ, आज नाविक जल्दी आया? बोले नहीं, आपके जो बताया हुआ उपाय है आपके रास्ते पे मैं चल के आई। मतलब कि हरि का नाम लेके मैं नदी पे चल के आई। अब ये सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, नदी पे कोई चल नहीं सकता पानी पे। आपने ही तो कल बोला कि हरि का नाम लेके भवसागर भी व्यक्ति पार कर जाता है तो ये छोटा सा नदी क्या है। तो इसको तो विश्वास नहीं था, बोल दिया। शास्त्र पढ़ के प्रवचन करना तो सबसे सरल है क्योंकि सब दिया हुआ है। विश्वास होना, श्रद्धा होना बहुत बड़ा बात है। तो बोले ठीक है दिखाओ। अरे फिर नदी के पास माता जी फिर पार, फिर आ गए वापस। अब पंडित कैसे करेगा, बोल तो दिया। माता जी बोले आपने बताया, आप तो हमारे गुरु जी, आप भी करिए। वो तो डूब जाता है, वो नहीं कर पाता क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो यहां पे बोल तो दिया लेकिन वो नियम दोनों पे अलग अलग लागू हुआ क्योंकि अलग अलग चेतना है। तो यहां पे एक विधि और निषेध के बारे में देखेंगे। तो ये क्यों जीव को भ्रम आता है, ये जीव को भ्रम है। चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास, कृष्णर तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। क्लियर करते हैं महाप्रभु, क्योंकि बहुत चर्चा है वे हर जगह पे कि जीव जो है वो भगवान के समान है कि जीव भगवान से भिन्न है। जैसे इस पिछले तात्पर्य में अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि शरीर पांच तत्वों से बना है अतएव यह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। उसके बिना नहीं रह, वो उसका स्वभाव है। और आज के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब किसी वस्तु को उसके अंशों से पृथक कर दिया जाता है तो उनमें, पृथक कर दिया जाता है मतलब कोई वस्तु है उसको अलग अलग कर दिया, उनमें समानता मानना भ्रम है। जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री राधा रास बिहारी की। तो क्या भ्रम है आज के श्लोक में बताते हैं। ये शब्द आता है ना, क्या सादृश्य ब्रह्म, ये भ्रम क्या है। ये भ्रम ये है कि जो जीव है वो क्या देख रहा है बद्ध जी, कि सब समान है। यानी वस्तु जब उसे अंशों से पृथक हो जाता है तो वो पृथक अंश और वस्तु, मूल वस्तु समान है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भगवान का अंश है जीव तो भगवान के समान है, लेकिन भगवान विभू है और जीव अणु है, तो ये भेद भी है। यहां पे मायावादी दार्शनिक क्या करते हैं कि इसी तत्व को उठा के, समान है ना, कि भगवान जो मूल वस्तु है और पृथक पृथक हो गए तो पृथक अंश जो है वो मूल से समान है, उसको लेके क्या बताते हैं कि क्योंकि हम माया में हैं इसलिए भगवान भी माया में है। तो ये उनका दर्शन है, अगर हम माया में हैं तो भगवान भी माया में है, हम भौतिक हैं इसलिए भगवान भी भौतिक है, हम नश्वर हैं भगवान भी नश्वर है, ये दर्शन को लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, इसीलिए अलग अलग वाद है ना, मायावाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। वाद मतलब लॉजिक, चैतन्य महाप्रभु ने कोई वाद नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, भेदा भेद तत्व, तत्व मतलब सत्य। महाप्रभु ने तत्व दिया, यही परम सत्य है। और क्या तत्व दिया, भेदा भेद प्रकाश। जीव कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है नित्य, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं है, भेद भी है अभेद भी है। कैसे, उदाहरण देते हैं, सूर्यांश किरण याचे अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविक कृष्ण रति न प्रकार शक्ति हाया। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य क्या, जो सूर्य है और सूर्य की किरण दोनों समान भी हैं और भेद भी है। अग्नि और अग्नि के कण वो भी समान है लेकिन भेद है, एक अणु है एक विभू है। वैसे ही कृष्ण जो है तीन शक्ति, कृष्ण की तो अनंत शक्तियां हैं लेकिन तीन प्रमुखता शक्ति है जो वो शक्ति से चल रहा है। विष्णु पुराण में यही श्लोक को, इसी तरह के श्लोक को बताया गया, एक देशे स्थित अग्नेत ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि जैसे सूर्य एक जगह पे, एक देश से स्थित, एक जगह पे स्थित है लेकिन अपने शक्ति से, अपने ऊर्जा से, कण से, जो सूर्य की किरण है उसे पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। अभी हम कह सकते हैं कि सूर्य इस मंदिर में है, इस मंदिर के इस हॉल में सूर्य है, लेकिन नहीं भी है। सूर्य है तभी तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन फर्क है। अभी हमने सुना कुछ दिन पहले कि वैज्ञानिक के बारे में आएगा, चर्चा तो आएगी, प्रभुपाद जी का तात्पर्य में आता ही है वैज्ञानिक। तो अभी वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं कि एक जैसे मून लैंडिंग हो गया, जो भी हुआ, चंद्र तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, पृथ्वी के अंदर तक पहुंच गए, ऊपर तक पहुंच गए, अब वो सूर्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, वो एक रोबोट डाल के वो एक मशीन बनाएंगे और भेजेंगे। और क्या पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए कि सूर्य की जो परत है, सूर्य का जो सरफेस है, वहां पे टेम्परेचर कम है। ये उनको पता नहीं कहां से पता पड़ा, जो भी है वहां पे टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे सूर्य से थोड़ा दूर जाते हैं तो टेम्परेचर लाखों गुना बढ़ जाता है। अब पता लगाने जा रहे हैं ऐसा क्यों है और कितना डिग्री टेम्परेचर है, 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां जो जा सकता है मशीन, प्रयास कर रहे हैं तो सूर्य तक को भेजने का, तब अगर वो यहीं पे भागो तब हमको मिल जाता है कैसे। और एक बात था कि वो कह रहे थे कि सूर्य के जो सूर्य ग्रह है वहां पे टेम्परेचर कम है, तो मतलब उन्हीं का सिद्धांत है वैज्ञानिकों का कि सूर्य इतना गर्म है वहां जीव नहीं रह सकता। और अभी आप बोल रहे हैं कि सूर्य का जो प्लैनेट है, जो सरफेस है, वहां पे टेम्परेचर कम है तो लाइफ है। तो ये प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञान, क्योंकि इनको पता नहीं है शास्त्र से। क्या सोचते हैं, आत्मवत मन्यते जगत, अपना सिद्धांत जितना समझ पाए, जितना अपनी बुद्धि में पकड़ पाए वो लगा देते हैं भगवान के ऊपर, वो लगा देते हैं आध्यात्मिक जगत पे। तो पांचवें स्कंद में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, जड़ भरत जी बताते हैं महाराज रहुगण को, एवं निरुक्तम शिति शब्द वृत्तम असन्निधानत परमाणवे ये अविद्याया मनसा कल्पितस्ते ये शाम समूहेन कृतो विशेष। बहुत सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ेंगे, अनुवाद और तात्पर्य इसी से आज के श्लोक से रिलेटेड। कोई यह कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, जो अलग अलग चीजें हैं वो पृथ्वी से उत्पन्न हो रही हैं। तथापि यह ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों से संयोग से उत्पन्न हुई किंतु यह कण अस्थायी है। पृथ्वी कैसे बनी? कणों से, और कण भी अस्थायी हैं। वास्तविक में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है, यहां बताते हैं जड़भरत जी। वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि पृथ्वी जो है वो कणों से बनी है। हर चीज कण यानी एटम अणु उससे बना हुआ है और हर चीज डिसॉल्व हो जाएगा। तो पूरा सृष्टि कैसे बना हुआ है? इस अणु से बना हुआ है। बूंद बूंद से समुन्द्र भरा जैसा, सब कण मिल गए तो सृष्टि बन गई। लेकिन यहां जड़ भरत जी क्या बताते हैं? वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है। यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं, यह सत्य नहीं है कि इस संसार में पाई जाने वाली विविधता परमाणु के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सृष्टि की रचना हार्मोन पे नहीं हुई है या कुछ केमिकल्स पे नहीं हुई है। श्लोक में आता है, हम तो प्रभुपाद जी सुनते हैं, जड़ भरत सेम वही तत्व को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, छोटा सा तात्पर्य है। जो परमाणुवाद के समर्थक हैं उनका विचार है कि परमाणुओं के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं। प्रभुपाद जी पहले बोलते हैं, किंतु वैज्ञानिक गण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोजने में असमर्थ है। प्रभुपाद का लॉजिक देखिए कि आप वैज्ञानिक हैं, आप कह रहे हैं कि सारी सृष्टि परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण हुई है, लेकिन आपको तो यह भी नहीं पता कि परमाणु किधर से आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किधर से आया। पहले प्रभुपाद ने उनका दर्शन को सामने रखा और अगली लाइन में दर्शन को उड़ा दिया। जैसे आप कुछ ना छोटा सा वस्तु रखें कहीं पे और फिर बड़ा लकड़ी लेके आए उसको काटते हैं। ऐसी दशा में हम यह नहीं कह सकते कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है, ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण परमेश्वर है। जन्माद्य यस यतः, वह समस्त सृष्टि के मूल कारण है। जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है, सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत् सर्वम प्रवर्तते, और ब्रह्म संहिता में सर्व कारण कारणम, और भगवद गीता में और भी प्रभुपाद जी हर जगह से लिखते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति अंते भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो कैसे सृष्टि की रचना हुई है वो परमाणु से नहीं हुई है, वो तो एक सिम्टम हो सकता है। कल एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी हार्मोन जो होते हैं तो वो हमारे बॉडी में चेंज होते हैं। हार्मोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हार्मोन, तो क्या वो हमारी चेतना पे भी असर डालते हैं? हार्मोन से चेंज में बॉडी में तो फर्क होता है, क्या हमारा चेतना में भी फर्क होता है? अचेतना तो सूक्ष्म है, चेतना पे हार्मोन का फर्क आ नहीं सकता। चेतना पे तो हमारे कार्यों से फर्क होता है, अगर कोई तामसिक कार्य कर रहा है, कोई राजसिक, कोई सात्विक या कोई भक्ति कर रहा है तो वैसी उसकी चेतना बनेगी, या तो और अशुद्ध होती जाएगी या तो विशुद्ध चेतना बनेगी। हार्मोनल बैलेंस जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, हमारे हार्मोन में चेंजेस हो रहे हैं, वो भी कर्म का कारण है, वो हार्मोन कारण नहीं है बॉडी में चेंज होने का। हम बाहरी रूप से बोल सकते हैं कोई गोरा है कोई काला है या सांवला है, क्यों? क्योंकि इसके पिगमेंटेशन में फर्क है, लेकिन वो तो सिम्टम है। पिगमेंट कैसे बदला? क्यों किसी को काला पिगमेंट मिला, किसी को सफेद पिगमेंट, किसी को लाल, किसी को अलग अलग कलर का, ये तो वैज्ञानिक पता नहीं लगाते। वो क्या सोचते हैं? सिर्फ पिगमेंटेशन चेंज होने से स्किन का कलर चेंज हो जाता है, और इसीलिए रिसर्च चल रहा है। तो अगर आप पिगमेंट चेंज करके स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं तो कौवे को गोरा बना के दिखाइए हंस के जैसे, कितना क्रीम लगा लीजिए कौवे को, देखें गोरा होता है क्या। तो इसके पीछे भी कर्म है, और कर्म को कौन नियंत्रण कर रहा है? भगवान। तो अगर इस तरह से जाएंगे तो बड़े सरलता से व्यक्ति समझ सकता है भगवान का अस्तित्व, और भगवान परम नियंत्रण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में। ये जो बुद्धि लगाते हैं ना, ज्यादा शास्त्र न्याय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं ना दुनिया में, उनके लिए श्लोक लिखा है कि अगर आपके पास इतना बुद्धि है तो क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार कर इते चित्ते पावे चमत्कार। आपके पास बहुत बुद्धि है, हर जगह लॉजिक लगाते हैं, तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है उसमें बुद्धि लगाइए, तब आपको चमत्कार मिलेगा, पावे चमत्कार, उसमें लगाइए बुद्धि, तो सही जगह पे लगाओ। फिर क्या बोलते हैं यहां पे कि जो है दूसरी प्रकृति है, तो ये भौतिक संसार भौतिक चीज से नहीं है, ये भौतिक तो भगवान का एक एनर्जी है, भूमि रपो नल वायु, लेकिन उसके बाद भी है ना। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अपरेयम इदस्त्व अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाभाव ययेतम धार्यते जगत। अर्जुन, ये तो जो भौतिक है ये भी मेरा ही हिस्सा है, लेकिन तुम जो जीव है वो ये भौतिक से अलग है। वो आध्यात्मिक है, मेरा अंश है, वो भौतिक नहीं है। तो ये समझना है, इसी को दूसरे रूप में कहा गया है विष्णु शक्ति परप्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा पर अविद्या कर्म संज्ञा संज्ञान्या तृतीय शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण में है कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और मार्जिनल, तटस्थ शक्ति। तो ये तटस्थ शक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर रूप से विस्तार किया है, जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए तो इसको बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है। वहीं पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास ये विकल्प हमारे पास है कि हम आध्यात्मिक शक्ति के अधिगत रहना चाहते हैं या भौतिक शक्ति के अधिगत रहना चाहते हैं। हम किसके दास बनना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन दास बनना पड़ेगा। तटस्थ शक्ति अपने आप में नहीं रह सकता, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, या तो माया का दास या तो कृष्ण का दास। तो यहां पे ये बता रहे हैं, ये चीज जो है ये भौतिकवादी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। यहां पे दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी देखते हैं, बताते हैं स्वप्न देखते समय मनुष्य जागने तथा सोने की स्थितियों में अंतर उत्पन्न कर देता है। जब स्वप्न देखता है व्यक्ति तो स्वप्न में सोता भी है और स्वप्न में जागता भी है, लेकिन स्वप्न में ही है ना, वो चाहे जाग रहा है और कुछ कार्य कर रहा है या स्वप्न में सो गया, है क्या फाउंडेशन उसका, आधार क्या है? स्वप्न। तो स्वप्न तो नश्वर है, जैसे ही उसका नींद पूरा हो जाएगा, नींद खुल जाएगा, स्वप्न चला जाएगा, तो उसमें जागृति अवस्था या स्वप्न में स्वप्न अवस्था दोनों ही नश्वर है। ऐसी मानसिक अवस्थाओं में, जो ऐसी मानसिक अवस्था में है, जो स्वप्न में है और स्वप्न में भेद कर रहा है, ऐसी मानसिक अवस्थाओं में शास्त्रों के विधान की जो आदेश तथा निषेध के रूप में होते हैं संस्तुति की गई है। तो जैसे जीव यहां भ्रम में जी रहा है, माया में फंसा जीव भ्रम में जी रहा है, और भ्रम कैसा है? स्वप्न के बराबर यहां पे तुलना किया गया, और जैसे स्वप्न में हम देखते हैं जागृत और सोने की अवस्था है, हम जागते भी हैं स्वप्न में और सो भी जाते हैं। स्वपौ जागृते, जागृत स्वपौ, है ना, जागना और सोना। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में हम जागते और सोते हैं, तथा वैसे ही विधि निषेधता, वैसे ही विधि और निषेध किन जीवों पे लागू होता है वो बताया गया है, ये सब पे लागू नहीं होता। जब महाराज दक्ष का यज्ञ चल रहा था और सती आई थी, शिव जी नहीं आए थे, जिसमें सती अपना शरीर त्यागेगी, तो उसमें सती बताती है, जब दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, बहुत कटु वचन बोलते हैं शिव जी के बारे में। एक बार तो पहले हो जाता है ब्रह्मा के सामने, अगले बार में ब्रह्मा जी आते ही नहीं है, उनको पता है क्या होने वाला। तो बहुत कटु वचन बोलने पर सती तो सहन नहीं कर सकती, तब सती बोलती है कि जो नियम होते हैं वो कुछ लोगों पे लागू होते हैं, कुछ लोगों पे विधि और निषेध लागू होते हैं, कुछ लोगों पे विधि लागू होता है, निषेध लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वैष्णव, जो परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, उन पे कुछ भी लागू नहीं होता, न विधि न निषेध, है ना। कुछ कार्य है तो किसी के लिए वो करना ठीक है, किसी के लिए करना अनुचित है, किसी के लिए दोनों ही अनुचित है, किसी के लिए दोनों उचित है। वैष्णव के ऊपर ये विधि और निषेध लागू नहीं होता है। वैष्णव कौन होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव। भगवद गीता में भी है, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण के लिए कृष्ण का भक्त कुछ भी करेगा, सामान्यतः भले वह कार्य निंदनीय हो, लेकिन कृष्ण का भक्त कृष्ण के लिए वो कार्य करेगा, यही भक्ति है। तो ऐसे भक्त पे ये विधि और निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि और निषेध किस पे लागू हो रहे हैं, यथा स्वप्ने, जो स्वप्न में है ना, जो भ्रम में है, जो भ्रम से बाहर है उस पे लागू नहीं होता, है ना, वो तो जागृत अवस्था में पूर्ण जो, तो जो जिसका चेतना बद्ध है, जो बद्ध अवस्था में चेतना शुद्ध है, उसके ऊपर ये विधि और निषेध हमारे लिए लागू होते हैं शास्त्रों के। अर्जुन को क्या बोला कृष्ण ने, कि ये तीन गुण जो है इससे ऊपर उठो। तो अब 11वें स्कंद में उद्धव जी पूछते हैं कृष्ण से, क्या गुण दोषाभिद दृष्टिर निगमाते न ही स्वतः निगमेनापवादाच विधाय इति ह ब्रह्म। भगवान अभी अभी आपने बताया कि शास्त्रों में जो है वो कुछ सही है कुछ गलत है, भगवान से कुछ ज्यादा पूछते हैं उद्धव जी, बोलते हैं बताइए सही गलत, सही गलत। तो बहुत देर बताने के बाद भगवान क्या बोलते हैं, ज्यादा मत पूछो सही गलत, क्योंकि ज्यादा इंक्वायरी भी गलत है इन चीजों में, इसको छोड़ो। तो उद्धव जी पूछते हैं कि ये तो पाप और पुण्य का भेद है, ये तो आपने शास्त्र में ही बताया है, और इसका विधि भी आपने बताया कि अगर पाप को काटना है तो ये करो, और ये करने से पुण्य खत्म हो जाएगा। पाप और पुण्य जो है वो दोनों क्या है, भगवान से द्वारा आए ज्ञान, और पाप और पुण्य से जो पाप को खत्म करना है या पुण्य बढ़ाना है वो भी जो है वो भगवान से आया है, और अब भगवान बोल रहे ये छोड़ो, तो कंफ्यूजन होता है, जीव तो विस्मृत हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा ना, इसमें बोलते हैं इसीलिए भ्रम हो गया। तो ये भ्रम से कैसे निकले, बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य आचार्यों ने दिया है, एक दो लाइन में पूरा क्लियर हो जाता है, ये शास्त्र में जो पाप और पुण्य है ये भ्रम से कैसे जीव निकल सकता है, सिर्फ एक और दो वाक्य में। जैसे यहां बोलते हैं ये जो भौतिक पुण्य है ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये एक सीढ़ी है, जैसे अगर हमें अंधेरी से चर्चगेट जाना है ट्रेन पकड़ के, तो ट्रेन में चढ़ना उद्देश्य नहीं है। भले वो हो सकता है कि इतना भीड़ है इसीलिए हम उद्देश्य मानते हो कि ट्रेन में चढ़ गए, अंदर गए, वही बहुत है। आप देखे ना, अभी स्टेशन में जाइए, अभी चर्चगेट जाने वाली जो ट्रेन होगी क्या होगा, वहां जो लोग खड़े हैं उनका एक ही उद्देश्य है जीवन का कि अंदर बस जाना चाहिए। जीवन का बस उद्देश्य होने है, उद्देश्य है आपको जहां पहुंचना है वहां पे पहुंच के जो कार्य करना है वो उद्देश्य है। तो पाप और पुण्य, पुण्य जो है ये उद्देश्य नहीं है। आज संसार में क्या चल रहा है, सब पुण्य कमाना चाहते हैं। अब पुण्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, पुण्य से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन संसार में ऐसा विशुद्ध सुख नहीं है ना, दुख साथ में पैकेज है। सिर्फ सुख ऐसा नहीं है यहां पर। तो जब हम समझ जाएंगे कि यह पुण्य जो है यह गोल नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है जीवन का, यह सिर्फ हमको आगे बढ़ाने के लिए है। और पाप और पुण्य क्या है वो आचार्य बताते हैं एक लाइन में, जो कृष्ण को प्रसन्न करे, हमारा जो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करे वो पुण्य है, हमारा जो कार्य कृष्ण को अप्रसन्न करे वो पाप है। बस वृंदावन में आप कृष्ण हॉल है ना, प्रसादम हॉल बड़ा हो, वहां पे प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर कोट्स लिखे हुए, बहुत सारे बैनर लगे हुए बहुत सारे, उसमें एक प्रभुपाद जी का वाक्य है, जो कृष्ण कहते हैं वही अच्छा है, हम वही करेंगे क्योंकि वही अच्छा है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं बस और कुछ। देखिए हर जगह से शास्त्र का मिलन हो रहा है और इस शास्त्र का जो जीवित देखना है वो प्रभुपाद जी। कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, पाप और पुण्य, भौतिक पाप और पुण्य नहीं देखना, क्योंकि वही सबसे बड़ा पुण्य है, वो भक्ति है। और आचार्य बताते हैं कि अगर हम कृष्ण को अप्रसन्न कर रहे हैं तो वही पाप है। इसलिए अर्जुन को क्या बोले, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। ये छोड़ो अर्जुन, ये तो भूल जाओ, ऊपर उठो। और यहां पे भी यही व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी तीन श्लोकों में, यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। यहां छोड़ो संसार में सुख दुख लगाओ, इसके परे, यानी साधक को यहां रहते हुए अपना सुख और दुख कृष्ण से कनेक्ट करना चाहिए कि कृष्ण और गुरु प्रसन्न हो रहे हैं तो वो हमारे लिए सुख है, वही पुण्य है, और अगर वो अप्रसन्न है तो वही हमारे लिए दुख और पाप है। अब भ्रमित अवस्था में जीव को ये ज्ञान मिले कैसे, ये प्रश्न होता है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना, कैच 22, मतलब अगर आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा ये नहीं कर पाएंगे। एक कार्य करने के लिए दूसरा कार्य संपन्न होना जरूरी है, लेकिन पहला कार्य करने के लिए जैसे दूसरा कार्य संपन्न होना जरूरी है, दूसरा कार्य होने के लिए पहला कार्य संपन्न होना जरूरी है, तो फंस जाएगा। तो भ्रमित है जीव, वो तो भ्रम में फंसता जाएगा, बाहर कैसे निकलेगा, और क्योंकि भ्रम में है तो गलत ही जाएगा, सही ज्ञान कैसे मिलेगा, फिर वो गलत बोलेगा तो ठीक है, उसका क्या उपाय है। तो उसका उपाय भी भगवान बड़े कृपालु हैं। हमारा कैसी परिस्थिति है वो आप कई बार कॉकरोच देखेंगे, कॉकरोच जानते हैं ना, वो उल्टा हो जाता है, आप उसको सीधा करने का प्रयास करो फिर उल्टा हो जाता है, फिर उसको सीधा करो फिर उल्टा हो जाता है, आप उस पर कृपा कर रहे हो कि सीधा हो जाओ और घर चले जाओ ना, फिर उल्टा हो जाता है। असंख्य अवतारों में भगवान यहां प्रकट हुए, असंख्य साधुओं भक्तों को भेजा, ग्रंथ को भेजा, लेकिन बद्ध अवस्था में क्या है हमारा, फिर वहीं पे, फिर चैतन्य महाप्रभु बार बार कृपा करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण मुखा हया, सही जीवन निस्तारे माया तहारे छड़िया। क्या होगा यदि कृष्ण मुख हया, यदि जीव कृष्ण उन्मुख हो जाएगा, कृष्ण की तरफ मुड़ जाएगा, कैसे मुड़ेगा? कृष्ण उन्मुख कहते होगा साधु शास्त्र कृपाया, साधु और शास्त्र की कृपा से बहिर्मुख जीव उन्मुख हो जाएगा, कृष्ण मुख हो जाएगा, तब क्या होगा? से जीवन अस्तारे माया तहारे छड़ा, तब माया उसको छोड़ेगी। महाप्रभु बोलते हैं माया छोड़ेगी, हम नहीं छुड़ा पाएंगे माया से अपने आप को, हम नहीं छुड़ा सकते, मम माया दुरत्तया। लेकिन साधु का कृपा होगा, शास्त्र का कृपा होगा, तब क्या करेंगे? और यहां पे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, ये साधु क्या करते हैं, अनुवाद में प्रभुपाद जी एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं, ये साधु स्वतः वॉलेंटरली स्वतः जाके पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, ये ऐसे साधु हैं जो प्रचारक हैं, स्वतः जाके प्रचार करते हैं, उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता। तो ये साधु कृपा करता है जीव पे, तो जीव बुलाता नहीं है। नंद महाराज बोलते हैं ना, कौन थे, गर्ग मुनि आए थे, गर्ग मुनि, जब गर्ग मुनि आए थे, कृष्ण वसुदेव जी ने भेजा था कृष्ण बलराम का नामकरण करो, नंद महाराज ने तब क्या बोला, हम गृहस्थ तो यहाँ फंसे हुए हैं और निकलने का हम विचार भी नहीं करते, आप जैसे महात्मा नहीं आएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ये साधु है। और कहते हैं माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध है जीव, जो माया में बद्ध है जीव मुग्ध है, स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होगा। कैसे स्वतः हो जाएगा अपने आप चीज, चांस थ्योरी जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्वतः प्रकाशित नहीं होगा, कैसे होगा? जीवेर कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण, जीव पे कृपा करते हुए कृष्ण ने वेद व्यास जी ने ये वेद पुराण दिए, तब जाके वो ज्ञान प्रकाशित होगा। हम साधना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो कहां से मिला, वो साधु और शास्त्र की कृपा से मिला। कोई जीव को सुकृति है भी और वो ढूंढ भी रहा है साधु को, अब बहुत बिरले है, साधु उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं, साधु स्वयं आएगा। भक्तिनोद ठाकुर इसी तत्व को एक भजन में बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कृपा करो वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हाओ दूर। अभिमान जो है वो कैसे दूर होगा? जब भजीते भजीते, जब भजन करेंगे। लेकिन भजन तो होगा नहीं, भजन करना तो, भजन करने के लिए तो हमको पता भी नहीं ना भजन क्या करना है, किसका करना है, उसके लिए संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। देखो पूरा संबंध ज्ञान को बड़े सुंदर तरीके से विस्तार किया चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी के तात्पर्य मैंने सनातन शिक्षा में चैतन्य चरितामृत पूरा विस्तार है। ये संबंध, उस दिन महाराज भी कह रहे थे संबंध ही नहीं पता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वेद पुराणों में क्या है, संबंध अभिद्य प्रयोजन। कई बार आप बाहर जाएंगे, इस्कॉन में सारे हमारे लेक्चर्स हो, बुक्स हो, प्रवचन हो, सबसे पहले इस्कॉन का कोई भी प्रीचर होगा, किसी को प्रचार करेगा ना, संबंध ज्ञान के बारे में बताएगा, नेचुरली उसका मुख से वही निकलेगा, आप कौन, कृष्ण कौन, आपका क्या संबंध है। क्योंकि संबंध के बिना आप उसको बोलोगे हरे कृष्णा करो बाकी सब ठीक हो जाएगा तो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, उसको पता नहीं क्यों करना है, एक दिन दो दिन कर भी दे, हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, कुछ लोग थोड़ा कीर्तन कर भी लेते हैं फिर चले जाएंगे, इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोले पुस्तक दो, पुस्तक में क्या होगा, संबंध ज्ञान स्थापित होगा। संबंध ज्ञान स्थापित होगा तब जो ये स्थिति नहीं आएगी, भ्रम, भ्रम नहीं होगा। और कैसे वो संबंध होगा, संबंध जानिए भजीते भजीते अभिमान हाव दूरा, कैसे संबंध होगा, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, जब वैष्णव ठाकुर कृपा करेंगे तब संबंध समझ में आएगा, स्थापित होगा, तब तो आगे बढ़ेंगे अभी देह प्रयोजन की तरफ। अब बाहर आप किसी से पूछिए इस्कॉन के बाहर, हर कोई बोलेगा हम भी भक्ति करते हैं। चल मुझे किसी ने कहा कि हम तो 27 साल से भक्ति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या भक्ति कर रहे हैं, क्या मंत्र, कुछ मंत्र, ये गुरु ने बोला, वो गुरु ने बोला, ये भगवान का, वो भगवान का, ये देवता का, हम 27 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन संबंध नहीं पता किसका भक्ति कर रहे हो। बोले हम हर मंगलवार को गणपति जी और रिद्धि सिद्धि का जो है वो पूजा करते हैं, क्या क्या सामग्री रखते हैं सब डिटेल बताए। मैं बोला रिद्धि सिद्धि कौन? बोले गणेश जी की पत्नी। गणेश जी कौन, किसका पुत्र है? शिव जी और पार्वती का। और शिव जी और पार्वती क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और गणेश जी क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आपको ये भी नहीं आप के जो इष्ट देव हैं उनका क्या संबंध है भगवान से वो भी नहीं पता, तो अपने बारे में भी अच्छा आप कैसे जुड़े हैं नहीं पता। तो संबंध ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जीव भ्रम में ही रहेगा, बाहर आने का कोई उसका प्रश्न नहीं उठता। और ऐसे ही कृपा करने के लिए आचार्य आते हैं, और वैसे ही आज एक महान आचार्य श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव है। आविर्भाव क्यों होता है? संबंध ज्ञान स्थापित कराने के लिए हम लोगों को। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो हैं, ये द्वादश गोपाल जो नित्यानंद प्रभु हैं उनके साथ रहते हैं, द्वादश गोपाल उनमें से ही हैं, और ये 10 नंबर के गोपाल हैं। इनके पिताजी जो थे वो सदाशिव कविराज, सदाशिव कविराज, इनका पूरा परिवार के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या किया भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत में, आदि लीला 11वां अध्याय 38 नंबर श्लोक से 40 नंबर श्लोक, 3 श्लोक परपट में लिखा हुआ है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे वो भी महाभागवत कानू ठाकुर, और जो उनके पिताजी थे सदाशिव कविराज वो चंद्रावली हैं, और सदाशिव कविराज के जो पिताजी थे वो रत्नावली गोपी हैं। ये परिवार है इनका, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं महाभाग्यवान, और ये खुद गोपाल हैं। तो आज श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है, हम प्रार्थना करेंगे वैष्णव ठाकुर से कि हमें भी कृपा करें, और जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि आप कृपा करो संबंध जानिया, हमको संबंध समझाइए, आपके आशीर्वाद से संबंध समझेंगे, फिर भजिते भजिते फिर तो भजन करेंगे, और तब क्या होगा, अभिमान होया दूर, तब अभिमान जाएगा जीव का, संबंध से समझ जाता है कि भगवान कौन है। एक बार एक महाराज बता रहे थे कि जब पहले पहले हम जप करना चालू करते हैं तो हमको लगता है कि हम भी कोई छोटे, पहले तो हम सोचते हैं हम खुद भगवान हैं, फिर जब करना चालू करते हैं तो हमको लगता है हम बहुत महान भक्त हैं, क्योंकि जब पहला माला शुरू करते हैं, एक माला करते हैं, आधा माला करते हैं, तो बहुत टेस्ट आता है ना, रुचि आता है। तो अष्ट सात्विक विकार का जो छाया वैसा ऐसे प्रकट होने जैसा दिखा, हमको लगता है हम बहुत महान है, परमात्मा से बिल्कुल निकटतम का हमारा संबंध जो स्थापित हो गया है, डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन जैसे ही माला बढ़ता है, दो माला, चार, आठ, 16 माला करने लगता है, धीरे धीरे उसको क्या है, पता पड़ने लगता है, न तो भगवान हूं, न तो महान भक्त हूं, न तो भक्त हूं, न तो दास हूं मैं। और यही समझना उसके लिए संबंध प्रकाशित हो रहा है, दास 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 अनुदास, जब तो होता नहीं हमसे, हम तो बैठते हैं माला पकड़ते हैं सो जाते हैं, फिर भगवान कैसे हो गए या भक्त कैसे हो गए, तो माला पकड़ते सो जाते हैं। तो ये हमें अभिमान दूर करने के लिए, ऐसे हम सोचेंगे तो अभिमान हमारा कटना चालू हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? माइक पूछा तब तक बोलो बोलो आवाज आएगा।
हरे कृष्ण। भगवान शाश्वत है लेकिन उसमें से एक बात नहीं समझ में आ रही है कि भगवान से जो निकलते हैं ब्रह्मांड भी निकले भगवान से, हम लोग भी भगवान से आए हैं, तो हम लोग शाश्वत हो गए, ब्रह्मांड जो बना वो भौतिक हो गया अशाश्वत, ये कैसे ऐसे होता है समझाते हैं।
ऐसे अशाश्वत करके नहीं है, क्या है भूतवा भूतवा प्रलियते है ना। जैसे आप कभी शहर में बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे कुछ बेचने वाले आ जाते हैं तो कुछ कपड़ा बिछाते हैं, अपना सामान रखते हैं, दुकान खोल देते हैं। रात को क्या होता है, सामान उठाते दुकान बंद, वहां कुछ है नहीं है, फिर अगले दिन फिर चालू हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जब सवेरे उठते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको शक्ति मिलता है, वो सृष्टि करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना भगवान सृष्टि करता है ना, ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है, लेकिन सृष्टि करने के लिए जो सामग्री किसने दिया? आप किसी कारपेंटर के पास जाइए, उसको लकड़ी लाके दीजिए, सब सामान लाके दीजिए, उसको बोलो फर्नीचर बनाओ, तो सृष्टि करता वो थोड़ी होगा, तो विष्णु है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या दिया, ये शक्ति दिया कि सारा सामग्री को इकट्ठा करो और बनाओ, इसमें से वो ज्ञान मैं देता हूँ। वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि चलता 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 लाखों करोड़ों साल हो जाता है, फिर जब ब्रह्मा जी शाम होती है चले जाते हैं, वो शाम को बंद हो जाता है, इधर दुकान बंद हो जाता है हमारा, तो इधर क्या प्रलय आ जाता है। ऐसा करते ब्रह्मा जी का 100 साल जब हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान विष्णु के अंदर समा जाता है, तो खत्म नहीं होता है, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन प्रकाश हो रहा है वो कभी होता है कभी नहीं होता, इसीलिए उसको अशाश्वत कहा गया है ना। नहीं तो भगवान का है तो वो हमेशा रहने वाला है लेकिन उस रूप में नहीं रहेगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पहले भी था, कण थे, अभी बिल्डिंग कुछ साल बाद टूट जाता है फिर वो कण हो जाते हैं, रूप परिवर्तन हो गया ना, इस प्रकार से इसको कहते हैं।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आप बता रहे थे कि हमारा जो सेवा भगवान कृष्णा को प्रसन्न कर सके वो पुण्य है और जो न प्रसन्न कर सके वो पाप है। तो हम मंदिर में रह के इतने सारे एक्टिविटी करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कृष्णा को ये सेवा पसंद है और ये सेवा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर नहीं पसंद होगा तो ये पाप हो जाएगा, कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को?
कृष्णा की कृपा से गुरु मिलते हैं ना, तो गुरु बताते हैं ना, है ना। इसके लिए जो हमारे गुरु हैं, चाहे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु जो हमारा अथॉरिटी है, वो अगर हमारे कार्य से प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है, यही हमारा मीटर है मापने का। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण तो हमको बताएंगे नहीं ना खुद, हमारा तो वो स्तर नहीं है ना, परंपरा के द्वारा हमको पता पड़ता है। तो हमारे जो ऊपर है अथॉरिटी वो अगर प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न, वो प्रसन्न नहीं है तो कृष्ण प्रसन्न नहीं है। प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर है या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर है, इनकम टैक्स मिनिस्टर नहीं आएगा आपके पास इनकम टैक्स लेने, वो एक ऑफिसर आएगा, आप उसको देंगे सही, वो कैलकुलेट करके आपका रिपोर्ट भेज देगा, उधर से आपको क्लीन हो गया। तो भगवान से हमको पता पड़ेगा भगवान प्रसन्न है कि नहीं है, एक तो शास्त्र द्वारा कार्य करने से वहां पे दिया है, उसमें डिटेल के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ बुक्स विल नॉट गिव एनी रिजल्ट, गुरु चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, रंध्रा श्रीमद भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे।